हेलो एंड वेलकम, आप सुन रहे हैं कोशी टॉक्स पॉडकास्ट। सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 वबा से पूरी दुनिया मुतासर हुई है और इस पैंडेमिक के चलते हुए हमने अपने सारे पॉडकास्ट रिशेड्यूल किए हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने पॉडकास्ट ऑनलाइन ही रिकॉर्ड करें। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट इकबाल अफरोज साहब ने। इकबाल साहब का ताल्लुक लिटरेचर से है, मेरी मुराद उर्दू अदब से है। इकबाल साहब गुज़श्ता एक दिहाई से जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान और अदब को फ़रोग देने में एक सरगर्म नाम है। इकबाल साहब ने अपना अदबी सफ़र के लिए तनकीद व तहकीक का मैदान चुना है। चूँकि इकबाल साहब जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी में बहसीयत असिस्टेंट एडिटर शिराज़ा उर्दू और रियली एंथोलॉजी हमारा अदब के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इन जर्नल्स के एडिटरल बोर्ड के मेंबर भी हैं। इकबाल साहब की अब तक 3 किताबें शाया हुई हैं और 30 से ज़्यादा मकाले उर्दू के नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में शाया भी हुए हैं। मौसूफ़ को नगीना इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिल वक्त इकबाल साहब उर्दू ज़ुबान और अदब के कदावर अदीब नकाद शमसुर रहमान फारूकी की फिक्शन क्रिटिसिज्म पर अपना PhD मकाला लिख रहे हैं। इकबाल साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने आज मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, इसकी दावत दी, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।
इकबाल साहब से और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन पहली बात जो मेरे जहन में आ रही है, बजाय इसके कि लोग किताबों से पढ़ें, हमारी जनरेशन डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग को तरजीह देती है, जैसे कि YouTube, PDF या फिर बाकी बहुत सारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, लोग उनसे पढ़ते हैं उर्दू ज़बान, उर्दू लिटरेचर। बदकिस्मती से उर्दू ज़बान में शाया होने वाली अक्सर किताबें जो हैं वो डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग है या डिजिटल मोड ऑफ जो रीडिंग है उस पर वो जो है मैसर नहीं होती। तो इकबाल साहब, आपके ख्याल से जो ये डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग की तरफ लोग रागिब हो रहे हैं, बजाय इसके लोग किताबों से पढ़ें, लोग PDF या फिर YouTube को जो प्रेफर कर रहे हैं, इसके कितने नुकसान जो है हमारी कम्युनिटी पर पड़ते हैं और आने वाली जो नस्लें हैं वो उर्दू अदब से कितने दूर रहेंगे या इससे कितने फ़ायदे हैं कितने नुकसान हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
अमजीत साहब, देखिए, आपका सवाल जो है ये काफ़ी दिलचस्प है और गौर फिक्र का मुतकाजी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो आज का दौर है, आज का इरा जो है, ये टेक्नोलॉजी का इरा है, इस बात से हम कतई तौर पर इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक उर्दू ज़बान और अदब का ताल्लुक है और जो नई नस्ल है यानी आज की जनरेशन है, इस बात से हम कतई तौर पर इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमें इस टेक्नोलॉजी लाइक सोशल साइट्स जो हैं, मतलब जो हमारी आज की जो फैसिलिटीज़ हैं, इनसे हम बेशक इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिजर्वेशंस हैं और उर्दू ज़बान के जो बड़े अदीब हैं, मुहक्किक हैं, नकाद हैं, क्रिटिक्स हैं, उनका भी इसमें कुछ तहफ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन। वो क्या है? वो दरअसल ये है, किताब का एक जो हार्ड कॉपी किताब है जो हम पढ़ते थे उसमें कंसंट्रेशन रहती थी, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते थे, एक किताब पढ़ते थे सुबह से शाम तक या 2 घंटे 3 घंटे, उसमें हम एक ही टॉपिक पर फोकस के साथ वो किताब पढ़ते थे, उसको अच्छी तरह पढ़ते थे। वाइल एज उसके बरक्स जब हम आज आप यूट्यूब पर कुछ पढ़ते हैं, गूगल पर कुछ पढ़ते हैं, फेसबुक पर कुछ चीज़ देखते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन फौरन हट जाती है। कैसे? जो ही आप यूट्यूब पर कुछ आप अरिस्टोटल प्लेटो के बारे में कुछ देखते हैं, फौरन आपकी चीज़ दवाई बाई किसी और चीज़ पर जाती है और आपकी कंसंट्रेशन हट जाती है। इस तरह हमारी जनरेशन जो है, खासकर जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन में एक प्रॉब्लम कहे या उनमें वो कुछ चीज़ों को उधर उधर फिसलने का वो ज़बरदस्त खतरा है और जो उनका असल मुद्दा है वो छूट जाता है। अगर आप फेसबुक पर, जैसे कि जब हम मोबाइल पर या उनके लैपटॉप पर या जो दूसरे वो नोटबुक्स पर कुछ किताब पढ़ते हैं, उसमें कंसंट्रेशन नहीं रहती है।
जी बिल्कुल, इस वक्त पूरी दुनिया में उर्दू का जो है यही मनाजर है। जम्मू कश्मीर में उर्दू का जो मौजूदा मंजरनामा क्या है?
देखिए अमजीत साहब, जहाँ तक उर्दू ज़बान और अदब का ताल्लुक है यानी इसका मौजूदा मंजरनामा क्या है, देखिए, उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के हवाले से रियासत जम्मू कश्मीर में 2 सतह पर काम हो रहा है, एक सरकारी सतह पर और दूसरा गैर सरकारी सतह पर। देखिए, जहाँ तक सरकारी सतह पर काम होने का ताल्लुक है, सरकारी सतह पर एक जो सरकारी इदारे हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और नशरियाती इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वहाँ शोबे उर्दू है। शोब उर्दू में उर्दू के हवाले से क्या काम हो रहा है, उसमें दरसो तदरीस के साथ साथ तहकीक हो रहा है, यानी मुख्तलिफ लोगों पर मकाले लिखे जा रहे हैं, यानी जो उर्दू ज़बान में स्टॉलवर्ट्स हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान के हवाले से उर्दू ज़बान व अदब के मुख्तलिफ असनाफ हैं, जेनर्स का रिसर्च वर्क हो रहा है उर्दू डिपार्टमेंट में। और इसके साथ साथ वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, उस पे डिबेट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस का मकसद मुद्दा ये होता है कि जो नए लोग हैं, जो नई नस्ल है, उनका उर्दू के साथ एक ताल्लुक, एक सिलसिला बना रहे, एक रिश्ता बना रहे। इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी की मैं जहाँ तक बात करूँ, वहाँ एक शोबे उर्दू है, दूसरा है निज़ामत फासलाती तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी दरस तदरीस, वहाँ हर साल 500 तालिब इल्म एमए उर्दू करते हैं। इसके साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही है इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलासफी, वहाँ भी इकबालियात पर काम होता है और रिसर्च भी होता है वहाँ भी। यानी मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें उन डिपार्टमेंट में रिसर्च के साथ साथ, दरसो तदरीस के साथ साथ, फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, एक्सटेंशन लेक्चर्स होते हैं। इसमें जो बाहर की, कश्मीर से बाहर के बड़े जोड़े प्रोफेसर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है। इसके अलावा नशरियाती इदारे जैसे दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर है, रेडियो कश्मीर श्रीनगर है। मैं दूरदर्शन के हवाले से बात करूं, दूरदर्शन में जो उर्दू के प्रोग्राम होते हैं वो तो अपनी जगह है, उसका एक अपना वो काम कर रहा है, लाइक खबरें होती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने। इसके साथ साथ उर्दू का एक मखसूस प्रोग्राम है दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में, नकुश। नकुश में भी मतलब हर फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिन के बाद वहाँ एक प्रोग्राम होता है जिसमें रियासत के किसी कौन मशक अदीब को उसमें बुलाया जाता है, कोई नौ आमोज को भी बुलाया जाता है, उसका एक इंटरेक्शन होता है, सवाल और जवाब का होता है, इस तरह उसको आगे आने का मौका मिलता है। और जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो सीनियर लिखने वाले हैं, उनके साथ जूनियर्स को भी बैठने का मौका मिलता है, और इस तरह एक ये अदब का रिश्ता रवान दवा है। इस तरह नई नस्ल जो है, इस तरह उनकी भी नशो नमा हो रही है, इस तरह उनकी उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इस तरह ये कारवा रवान दवा है। रेडियो में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम, खबरें, मुख्तलिफ फीचर्स वगैरह, इसके साथ साथ उर्दू का एक प्रोग्राम हम कलम होता है। हालांकि कोविड की वजह से, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि कोविड की वजह से मुख्तलिफ प्रोग्राम थोड़े से रुक गए हैं, वो थम गए हैं, इस तरह दूरदर्शन केंद्र का भी ये प्रोग्राम, नुकू जो है रेडियो का हम कलम भी है, ये तरह उसमें थोड़े से वक्ती तौर पर उसमें एक तातुल सा हो गया पैदा। लेकिन इसी तरह कल्चरल एकेडमी एक बड़ा इदारा, 10 जबानों में एक रिसाला निकलता है शिराजा, खासकर उर्दू ज़बान में माहनामा, हम इसको मंथली शाया करते हैं। इसमें हम रियासत जम्मू कश्मीर की तहजीब व तमदन, सकाफत, लिटरेचर के हवाले से ये शुमारा शाया होता है एक रिसाला हमारा। वो खास के अलावा जो हमारे उर्दू के हवाले से बड़े नाम हैं, उन पे हम स्पेशल इश्यूज हमने शाया किए, जैसे हामदी कश्मीरी साहब है उस पे हमने एक स्पेशल इशू, हकीम मंजूर साहब है, इसी तरह काजी गुलाम मोहम्मद हैं, गुलाम नबी ख्याल है, अब्दुल गनी शेख है, जो बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं कुछ नाम लेता हूँ। मतलब इन पे एकेडमी एक तो महाना तो जारी है, उस पे तो वो एक रूटीन वर्क चलता रहता है, उसमें हम मजामीन, गज़लें, मंजूमात, इस तरह वो अफसाने वगैरह जो नई किताबें होते हैं उस पे भी थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, वो तो मामूल का काम है। लेकिन इसके साथ साथ एकेडमी जो नए लोग हैं, अफसाने हैं, सीनियर्स के साथ साथ जूनियर्स को भी बुलाती है, एक कभी कभार महफिल अफसाना होता है, महफिल मुशायरे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, इस तरह एकेडमी, कल्चरल एकेडमी की बात मैं कर रहा हूँ, कल्चरल एकेडमी अपनी तमाम तर वसाइल को बरोई कार लाकर हतल मकदूर ये कोशिश करके उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। लेकिन मैं एक बात ज़मनन कहूँ कि सरकारी सतह पर उतना काम नहीं हो सकता, हालांकि हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत बहुत और कई वजूहत हैं जो हम शायद नहीं बता सकते कि वजह से वो काम उस पाए का नहीं हो सकता जिस तरह गैर सरकारी सतह पर होता है। क्योंकि एक बात मैं कहूँ, यहाँ हमारा जो रिसाला है ये बेक वक्त 10 जबानों में शाया होता है, इसमें ये एक बड़ी परेशानी हमें होती है कि हमारा रिसाला मंथली प्रेस को जाता है लेकिन ये मंथली छप के नहीं आ जाता है, हमारे कभी 10 शुमारे इकट्ठे आते हैं, कभी 5 शुमारे का जाते हैं, तो इस तरह हमारा कारी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कारी थोड़ा सा इंतज़ार में रहता है कब मेरा मजमून, कब मेरा अफसाना, कब मेरी गजल वगैरह आएगी, लेकिन उसको 6-6 महीने, 7-7 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। ये सरकारी सतह की बात है। जहाँ तक गैर सरकारी सतह पर, गैर सरकारी सतह पर भी कुछ कुछ अंजुमने हैं जो उर्दू ज़बान के हवाले से ज़बरदस्त सरगर्म है। इस तरह यहाँ पे एक हालांकि वो नवजायदा एक अंजुमन है, गुज़श्ता 2-4 सालों से है, उसका नाम है फिक्शन राइटर्स गिल्ड, जहाँ पे हफ्तावार एक नशस्त होती है फिक्शन के हवाले से, जहाँ पे उर्दू, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी हर लोगों को मतलब एक नशस्त, फिर उस पर बहस मुबाहसा होती है। वो तकरीबन 2-4 साल से एक मुस्तहकम इदारा वो बन रहा है जो उर्दू ज़बान के हवाले से, खासकर उर्दू फिक्शन के हवाले से काम कर रहा है। इसी तरह कुछ और अंजुमने हैं, नगीना इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी नगीना इंटरनेशनल एक रिसाला भी शाया होता है, वहाँ भी इसके हवाले से काम हो रहा है। मतलब ज़मीन में एक बात अर्ज़ करूँ, शोबे उर्दू, जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, वहाँ से एक रिसाला निकलता है बाज़याब्त, तो वो सालनामा। इसी तरह फासलाती तालीम से एक रिसाला निकलता है तसलसल, वो भी उर्दू में। इसमें मतलब सीनियर लोगों के साथ साथ जो नए लिखने वाले, वो भी उनका उसमें छपता रहता है। इसी तरह इकबाल इंस्टीट्यूट से एक तहकीकी मुजल्ला निकलते हैं इकबालियात, ये साथ साथ कल्चरल एकेडमी का, जैसे आपको बताया कि शिराजा निकलते हैं वो माहाना, और साथ में एक सालनामा ईयरली एंथोलॉजी हमारा अदब शायद कल्चरल एकेडमी का, जो ईयरली एंथोलॉजी होता है जो इल्म अदब के हवाले से, जो जिन्होंने एक अच्छा काम किया है, शिक्षा के मुख्तलिफ पहलुओं को उसमें सम अप करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये जो जो गैर सरकारी इदारे हैं, जैसे मैंने अभी नगीना इंटरनेशनल का नाम लिया, वहाँ भी एक रिसाला नगीना शाया होता है, उसमें भी रियासत जम्मू कश्मीर के जो अदबी सूरत हाल है, जो नए लिखने वाले हैं, चाहे अफसाने लिखने वाले, चाहे प्रोज हो या पोइट्री हो, दोनों तरह के लोगों को उसमें शाया किया जाता है। इसी के साथ साथ लफ्ज़ लफ्ज़ एक और रिसाला शाया होता है। इसी तरह राजौरी से एक हमारा एक तफहीम का रिसाला निकलता है, उसमें भी नए लोगों के साथ साथ सीनियर्स के साथ साथ जूनियर्स भी उसमें शाया होते हैं।
जी इकबाल साहब, जैसे आपने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से हर साल 500 बच्चे जो हैं वो एमए उर्दू करके वहाँ से फारिग होते हैं, बाकी जो हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ पे उर्दू अदब, उर्दू सहाफ़त पढ़ाई जाती है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर के अंदर इस वक्त की जो उर्दू सूरत हाल है, जो उर्दू में लिखने वाली जो नई जनरेशन लिख रही है, जैसे कि आप जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी के असिस्टेंट एडिटर हैं शिराजा उर्दू के, और आप जब वो देखते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रोफेशनल ऑथर होता है? जब उसकी लिखाई देख के इंसानों को लगता है कि हाँ जी, ये किसी प्रोफेशनल ने लिखा है, जो ये बच्चे कश्मीर के अंदर जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनका जो मेयार है सीखने का, उर्दू अदब सीखने का, उर्दू ज़बान सीखने का, वो ठीक ठाक है, तो या फिर वो जस्ट टाइम पास कर रहे हैं कि मतलब शायरी अगर लिखनी है तो आखिरी वाले जुमले जोड़ दो, आती है जाती है खाती है पीती है, तो शायरी बन गई, गज़ल बन गई, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, इसमें आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात यह है, एक तो तालिबे इल्म वो हैं जो एमए उर्दू करते हैं, दरस व तदरीस का एक सिलसिला है उससे वाबस्ता है। दो चीज़ें यहाँ हैं, एक होता है तख्लीक करना, दूसरा होता है उर्दू सब्जेक्ट में एमए की डिग्री करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। आपको इस ये बात मलहूज नज़र रखनी है कि एक तालिबे इल्म जो एमए उर्दू कर रहा है, ज़रूरी नहीं है वो कोई फ़न पारा वो लिख सकता है, ये मेरी मुराद ये है कि वो गज़ल लिख सकता है, वो शायरी कर सकता है, वो अफसाना लिख सकता है, वो नावल लिख सकता है, या वो तनकीद वगैरह लिख सकता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक डिग्री के लिए पढ़ना, मतलब मैंने ये कहा निज़ामती फासलाती तालीम में, और एक इदारा मुझे भूल गया, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वहाँ भी तकरीबन 80 बच्चे हर साल फारिग होते हैं एमए उर्दू की डिग्री करके, और रिसर्च साथ साथ रिसर्च भी हुआ हो रहा है। ये हरगिज मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि जो एमए के तालिबे इल्म में जिन्होंने एमए किया वो कल लिखारी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, एक होता है डिग्री हासिल करना, एक तो ज़रूर डिग्री करते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिग्री करने वाला, हर एमए करने वाला, हर पीएचडी एक अच्छा कलमकार बन जाए। देखिए, कलमकार को कलमकार बनने के लिए शायरी करना चाहता, उसको शायरी के लवाजमात ज़रूरी सीखना होगी, उसको इसके पैरामीटर्स जानना जरूरी है, इसके क्या लवाजमात, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसको असली मतलब असली उसा इसके लिए उस्ताद के पास जाना है, जाना ही तलमुज तय करना है, जाना ही तलमुज मीन्स कि उसको एक उस्ताद मतलब बनाना है कि भाई मुझे ये सीखना है शायरी में काफिया क्या होता है, रदीफ क्या हो चीज है, ये मतला क्या है, ये बहर क्या है, वजन क्या है, तब जाके वो कहीं अच्छी शायरी कर सकता है। और मैं एक साथ एक बात, अभी आपने कहा कितने शायर, आपको मालूम होना चाहिए किसी भी उर्दू जबान में हजारों में शायर है, हजारों में शायर है, जरा आपकी जबान पर कितने लोगों के नाम है,
गालिब इकबाल
मतलब गिनती
गिने
के
चुने।
गिने चुने शायर, वजह यही है, हालांकि नाम कमाने के लिए एक तो कुछ कहने के लिए कोई भी वो फिक्रे कसना जुमले बनाना वो अलग बात है, कोई नाम कमाना किसी चीज किसी फील्ड में महारत होना वो अलग अलग एक मामला है।
जी
इसलिए
इकबाल साहब, जैसे
इसलिए एक मैं पहले इस सवाल को खत्म करता हूँ, इसलिए कोई भी सिनिफ हो, जनर कोई भी सिनिफ हो, डिग्री अपनी जगह, लेकिन एक कलमकार बनने के लिए एक तख्लीक करने के लिए उसको उस जबान उस सिनिफ के मिजाज व मेयार उसका टेम्परामेंट उस जबान के उसूलों जवाबित कवायद वगैरह जानना बहुत लाजमी है, वो डिग्री से ऊपर की चीज़ है, उनको अलग से समझना है। मेरे ख्याल में इस सवाल का किसी हद तक जवाब आ गया।
जी इकबाल साहब, जैसा कि आप कल्चरल एकेडमी के एडिटोरियल बोर्ड के शिराजा महाना जो शाया होती है, आपके पास काफ़ी सारी किताबें आती हैं जो आप एडिट करते हैं, जो आप देखते हैं पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है जो आजकल की जनरेशन जो लिखती है किस हद तक आप उससे मुतासर होते हैं, आपको लगता है कि हाँ अच्छा लिखा है? आपकी जो वाबस्तगी है उर्दू से, उर्दू लिटरेचर से, उर्दू जबान से है, जो नई जनरेशन आपको जो लिख कर गज़लें शायरी पोइट्री कुछ भी भेजती है, तो किस हद तक आप जो आप उनसे मुतासर होते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छा लिखा है?
देखिए जहां तक जो नए लिखने वालों का ताल्लुक है, देखिए पहले मैं एक बात कहूं, जो हमारे असातिज़ा हैं, असातिज़ा से मेरी मुराद जो हमारे इस वक्त जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने एक नाम कमाया, जो फन से वाकिफ हैं, जो फनी असरार और रमूज से आशना हैं, उन वो नए लोगों को नई नस्ल को सिखाने के लिए तैयार नहीं, वो और नई नस्ल में भी एक खामी है, उनमें भी एक तलब या तलाश और जस्तजू नहीं है, ये ख्वाहिश नहीं है, जस्तजू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे नए लिखने वाले हैं उनमें कुछ अच्छे नाम हैं जरूर है, जो जिनमें एक बिल्कुल एक तख्लीकी हुनर है, जिनमें एक तख्लीकी फनकारी है, जिनमें जबान जो जबान जानते हैं, हमारी शायरी में कुछ अच्छे नाम हैं और कुछ अफसानों में भी कुछ अच्छे नाम हैं, तनकीद में भी कुछ नाम हैं, तहरीर को हम देख कर ये कह सकते हैं कि उर्दू जबान का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हाथों में है, मतलब उर्दू जबान जो है वो अभी उर्दू कश्मीर में उर्दू जबान अभी महफूज है, अभी उर्दू जबान का जो मतलब जो कुछ न, जो अच्छे एक कारवां हैं, चाहे अफसानों के हवाले से हैं, चाहे तनकीद के हवाले से, चाहे शायरी के हवाले से, जहाँ तक मतलब हमारा हमारे इदारे का ताल्लुक है या हमारे रसाले का ताल्लुक है, कई चीज़ें कई लोग हमारे सामने आई, वो शायरी लेकर आते हैं, अफसाने लेकर आते हैं या तनकीदी मजामी लेकर आते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अभी अभी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं, अभी कुछ लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं अभी हम कदरे इत्मीनान हैं कि उर्दू के हवाले से हमें अच्छे नाम हैं यहाँ, खासकर नई नस्ल में, जिनसे हम ये तवक्कुह कर सकते हैं कि उर्दू जुबान कश्मीर में अच्छी तरह फल फूल रही है।
जी इकबाल साहब, आपने जिक्र किया अपने इदारे का और जो आपका माहनामा रिसाला शाया होता है शीराजा, आपने कहा कि जो आपके रिसाले शाया होते हैं माहनामा, मतलब हर महीने के बाद इसे आना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे 3 तारीख को या 4 तारीख को, हर महीने की उसी तारीख को अगर आपका रिसाला शाया होता है, पढ़ने वालों के अंदर भी जो है एक इंटरेस्ट, ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है कि चलो मुझे 4 तारीख को फलाना रसाला आ रहा है, मार्केट से खरीद के, बुक लाइब्रेरी से खरीद के पढ़ा जाएगा वो। और जो लिखते हैं उन रिसालों में, जो लिखने वाले हैं, उनके अंदर भी एक जो है एक
ख्वाहिश
ख्वाहिश सी रहती है कि मैं लिखूं इसके लिए, लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपने जिक्र किया कि जो आपके रिसाले हैं वो हर महीने के बाद जो है कंटिन्यूसली नहीं पब्लिश हो सकते हैं, वो जो है वो 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, एक ही बार, 5 या 6 जो आपकी जिल्द होती हैं वो एक ही बार जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। पहले चीज़ कि इसके पीछे जो ये कमज़ोरी है, जो कोताही है, क्यों नहीं ये जो ये माहनामा जो रिसाले हैं महीने के बाद ही क्यों नहीं पब्लिश होता। दूसरा सवाल इकबाल साहब मेरा ये है कि इसका इसका मेरे ख्याल से मेरी सोच कहती है कि इससे इसे काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जनरेशन पे। कुछ लोग जो उर्दू को पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, वो कल को इग्नोर कर देंगे इस चीज़ को कि चलो मेरे जैसे भी मैं लिखता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं शिराज़ा के अंदर मेरा कोई आर्टिकल आए, कोई शायरी, कोई गज़ल, कोई नज़म, कुछ भी आए, तो जब मैं देखूंगा कि यार 6 महीने के बाद आपके जो रिसाले पब्लिश हो रहे हैं, मैं सोचूंगा चलो ठीक है फेसबुक पर ही कोई पेज बना के पब्लिश कर लूँ, यूट्यूब पर पब्लिश कर लूँ, तो लोग इससे दूर नहीं हो रहे हैं।
देखिए, इसमें पहली बात यह है, एक तो जहाँ तक हमारे इदारे का ताल्लुक है, इसमें ये मसला है, हम 10 जबानों में शिराज़ा शाया करते हैं और इस तरह यहाँ पे एक हर जबान में एक शिराज़ा होता है, वो 10 जबानों का इस तरह एक प्रेस में, एक बल्क्स में जो किताबों का पब्लिकेशंस का एक वहाँ पे एक मामला रहता है, वहाँ पे जल्दी प्रेस का मामला है, उसमें कुछ गवर्नमेंट्स जो सरकारी कुछ लवाजमात होते हैं उस वजह से वो थोड़ा उसमें तातुल पैदा होता है। लेकिन एक बात मैं ज़िमनन कहूँ, और वो जो बात इस वक्त बिल्कुल मुनासिब है कि आज के जो अदीब हैं, ये पुराने ज़माने का दौर नहीं है कि वो अदीब उस रिसाले के मतलब उसमें इंतज़ार रहता है। सपोज़ आपने कुछ लिखे हैं गज़ल लिखी, आप फ़ौरन उसको फेसबुक पर पोस्ट करते हैं या दूसरी सोशल साइट्स पर चलते हैं, जो आपके मतलब दोस्त हैं, चाहे उर्दू, अगर आप उर्दू से वाबस्त हैं तो आपके दोस्त डेफिनेटली उर्दू के शायर अदीब वगैरह होंगे, तो फ़ौरन वो आपके सामने तक पहुँचता है और वो फ़ौरन उससे उनकी आरा, उससे दाद वसूल करते हैं या उनकी तारीफ लेते हैं। लेकिन जब वो रिसाले में छप जाते तो एक रिकॉर्ड के लिए रहता है और वो ताकि वो महफूज रहता है, ताकि जो बाहर जहाँ जहाँ ये उर्दू रिसाला जाता है तो जिन जो फेसबुक से या सोशल साइट से कम वाबस्ता होते हैं तो उन तक पहुँचता है। तो मेरे ख्याल में अब आज का जो कलमकार है, आज का जो पोइट है, आज का जो अदीब है, आज का जो कहानीकार है, वो मतलब कुली तौर पर इसी रिसाले पर मुनहसर नहीं है, क्योंकि फौरन जो ही कुछ वो लिखता है, अगर वो मेरे ख्याल में खांसता भी है तो वो फेसबुक पे खांसता है। इसलिए हालांकि इस फेसबुक के बहुत सारे नुकसान आते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल एक जेन्युइन अदीब हो, वो इससे अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकता है। वो अपना ग्रुप मुमताज़ अदीबों शुरा के साथ बनाकर फिर उन पर उनको अपनी तख्लीक बेच सकता है, वहाँ इसके उसके खूब से खूब तर बनाने में उनसे आरा ले सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, उनसे तजावीज़ ले सकते हैं, उनसे मशवरे ले सकते हैं। और चूंकि अदब में मशवरा, मुताला और मशक लाजमी चीज़ है, इसलिए मतलब रिसाले का वक्त पर आना ज़रूरी है, लेकिन उसकी कुछ वजूहत अलग हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो नए लोगों के नए लोग जो लिखने वाले हैं, नई नस्ल, जो नई जनरेशन है, उनके कैरियर में, उनको बदजुन होने में हमारा रिसाला मेरे ख्याल में किसी तौर भी आड़े नहीं उसमें आ सकता है, कोई रुकावट नहीं बन सकता है।
जी इकबाल साहब, शुक्रिया आपका बहुत। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू ज़ुबान जो है उसका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं?
देखिए अमजद भाई, इसका मुख्तसर जवाब ये है, अगर हमारे लिखने वाले, हमारे जो नए लिखने वाले हैं, जो हमारे सरकारी सतह पर उर्दू ज़ुबान को वाक़ियतन अपनी फितरत में पैवस्त करिए, उर्दू ज़ुबान को जो हमारी नई नस्ल, जो हमारे नए लिखने वाले, जिनमें भी थोड़ी सी भी रमक है, थोड़ी सी भी चमक है, थोड़ा सा भी ज़ौक शौक है, वो उर्दू ज़ुबान को अपनी फितरत के साथ पैवस्त करे, अपनी मिजाज के साथ इसको हम आहंग करे, तो मेरा यकीन है उर्दू ज़ुबान का मुस्तकबिल बिल्कुल ताबनाक है। उर्दू ज़ुबान का कश्मीर में बल्कि हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे हमारे नए अफसाना निगार सामने आ सकते हैं, अच्छे शायर सामने आ सकते हैं, अच्छे लिखने वाले, अच्छे तनकीद निगार सामने आ सकते हैं, लेकिन बशर्त के वो मुताले को अपने मुताले में वसत लाएं, अपनी मशक को जारी रखें और अपने सीनियर शोरा के साथ, अपने कौन मशक लोगों के साथ, अपने बुज़ुर्गों की सोहबत में रहे, उनसे मशवरा लें, और अगर ये हमारी नई नस्ल उर्दू ज़ुबान उर्दू अदब को अपनी फितरत के साथ पैवस्त करेंगे तो उर्दू ज़ुबान का कश्मीर में उर्दू ज़बान बहुत देर तक ज़िंदा रहेगी, उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल बिल्कुल ताबनाक होगा मेरा यकीन है, बशर्ते कि उर्दू ज़बान को अपनी फितरत के साथ पैवस्त करे, मुताला मशक और मशवरे को वजीफ़ हयात बनाए।
जी बिल्कुल, अच्छे की उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है कश्मीर के अंदर उर्दू अदब उर्दू ज़बान जो है हर कोई उसमें शौक रखेगा, पढ़ेंगे लिखेंगे। इकबाल साहब, आप एकेडमी के अदबी कामों के साथ साथ अपने तहकीकी कामों के बारे में हमें कुछ बताएं।
देखिए, सबसे पहले मैं उस इदारे का कहाँ इदारे के हवाले से कुछ बोलना चाहूँगा जिस इदारे से मैं वाबस्ता हूँ। हमारा इदारा जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी, हमारा जो उर्दू सेक्शन है वहाँ हम एक रिसाला, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि महनामा शिराज़ा उर्दू और साथ साथ हमारा अदब सालनामा ईयरली एंथोलॉजी है, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारी एक सेंट्रल कमेटी होती है और एडवाइजरी सब कमेटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको भी हम लोगों से लिखवाते हैं लेकिन उसको फॉलो करके उसमें कुछ हाँ बकदर ज़रूरत तरमीम इजाफा करके उसको शाया करवाते हैं। और इस वक्त भी तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि 2019-20 में जो हमने तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाए हैं जिसमें कश्मीर की कदीम ज़ातें, मशाहिर के खतूत, खामदी कश्मीरी के नाम, इसी तरह जम्मू की तमदुनी तारीख, मलिक हैदर चाडोरा की का तर्जुमा, इसी तरह और कुछ प्रोजेक्ट जिनके नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा शिराज़ा है, जो हमारा मेन काम है, शिराज़ा में पहली प्रायोरिटी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को शाया करना है, उनको छापना, उनको प्लेटफॉर्म देना, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हो, हमारी नाव आमोज़ हो, हमारी शायरी से वाबस्ता हो, हमारी प्रोज से वाबस्ता हो, चाहे गज़ल लिखने वाला हो, अफसाना लिखने वाला हो, नावल लिखने वाला हो, तनकीद लिखने वाला, तहकीक से वाबस्ता हो, तो उन सबको हम उसमें जगह देते हैं। जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो लेजेंड्रीज है, जो बड़े नाम हैं जिन्होंने उम्र भर उर्दू ज़बान और अदब को अपना ओढ़ूना बिछूना बनाया, उनके उनके हवाले से हमने स्पेशल इशूज़ शाया किए। मिसाल के तौर पर हामदी कश्मीरी, मीर गुलाम रसूल नाज़की, उमर मजीद, हकीम मंजूर, डॉक्टर फरीद परबती, इसी तरह गुलाम नबी ख्याल, काजी गुलाम महमद, इसी तरह अब्दुल्गनी प्रोफेसर अकबर हैदरी, अब्दुलरहमान मुखलिस, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, उन पर हमने कोशिश ये की कि उन पर हम भरपूर शुमारी हमने खसूसी इशा उन पर हमने शाया की, उन पर तरतीब दी। अल्लाह का शुक्र है वो सिलसिला जारी है, इस वक्त भी हम कई शुमारों पर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसके मतलब सालनामा हमारा अदब है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारी कोशिश रहती है कि जो एक जो जैसे हमने जो लेजेंड्रीज हैं, जो सादत हसन मंटू का नाम आपने सुना, वो हमारे कश्मीरुल नस्ल अफसाना निगार है, उस पर हमने एक मंटू सेंटनरी कोई सेलिब्रेशन थी उसमें हमने मंटू पर नंबर दिया। कृष्ण चंद्र, फैज़ अहमद फैज़, जो लेजेंड्रीज पर्सनलिटी हैं उन पे हमने हमारी कोशिश रहती है कि उसमें उस बड़ी शख्सियत को, खासकर जो उर्दू के हवाले से फिर उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से किसी न किसी तरह मिलता जुलता हो, उसको हम उसमें शाया या शामिल करने की कोशिश करते हैं, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को उसमें उस पर एडजस्ट करने की या उसका अहाता करने की कोशिश करते हैं। कोविड की वजह से हमारी बेशक हमारी सरगर्मियाँ कुछ डिस्टर्ब हुई, कुछ मुतासिर हुई, लेकिन हम साल में हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ऑल इंडिया लेवल के मुशायरे करते हैं, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस के अलावा ज़िलाई सतह पर मुशायरे होते हैं और महफिल अफसाना होते हैं, हमदिया मुशायरे होते हैं, नातिया मुशायरे होते हैं, इंशाया की महफिलें सजाई जाती हैं, मतलब उर्दू के हवाले से हम रवां दवा हैं। इसके अलावा जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, देखिए मैं कोई बड़ा अदीब बड़ा राइटर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा अभी तालिब इल्म हूँ, मैंने जो रिसर्च का काम किया है उर्दू के इस वक्त बरसगीर के बड़े नाकेद हैं, बरसगीर के बड़े मुहक्किक हैं, उनके बारे में इंतज़ार हुसैन कहते हैं कि आप जिन्न हैं या इंसान, उसका नाम है शम्सुर्रहमान फारूकी। पहले मैंने शम्सुर्रहमान फारूकी की मीर शिनासी, उन्होंने मीर पे एक काम किया है, जो 25 साल तक उन्होंने मीर पे काम किया, एक किताब लिखी है शेर शोर अंगेज़, उस पर मैंने अपना एमफिल का काम किया है, और इस वक्त जो मेरा काम है, मैं उर्दू के एक बड़े नागिन शमसुरामा फारूकी की फिक्शन तनकीद यानी फिक्शन पोएटिक्स और फिक्शन क्रिटिसिज्म जो काम किया उस पर मैं उसका अहाता करने के लिए मैं अपना पीएचडी का मकाला लिख रहा हूँ। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि खाकसार ने उनके साथ मुलाकात की है दिल्ली में, जिसमें मौसूफ ने बड़ी उम्दा बड़ी मुफीद बातें कही, कहाँ उनकी शख्सियत कहाँ नाचीज़ तालब इल्म, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हमारे साथ भरपूर मुलाकात की है, और ये मेरे ये यकीनन मैं उस मुलाकात को अपनी ज़िंदगी का एक कीमती सरमाया समझता हूँ। और इस तरह वो काम भी चल रहा है मेरा, लेकिन हालांकि उसमें उस काम में कुछ कश्मीर के नासाजगार हालात और कुछ कोविड की वजह से उस काम मेरे आड़े आ गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो धीरे धीरे वो काम चल रहा है। फिर वक्त मैं उसी मौजू पर मतलब उस काम में लगा हूँ, उस पीएचडी के टॉपिक पे, और इस तरह ज़िंदगी का सफ़र रवान। दुआ है अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत अदब की खिदमत करने की तौफीक दे।
बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप हमारे स्टूडियो आज आए, आपने हमसे ढेर सारी बातें की उर्दू अदब से, उर्दू शायरी, उर्दू कश्मीर के अंदर उर्दू कल्चर, इन सब चीज़ों पे आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत सारा शुक्रिया। आखिर पे हमारे सुनने वालों के लिए आपका कोई मैसेज, कोई बात जो आप उन तक पहुँचाना चाहेंगे?
देखिए, मैं सुनने वालों को यही कहूँगा, सबसे पहले बात जो हमारी उर्दू की जो हमारी नस्ल नई नस्ल है वो उर्दू ज़बान को पढ़े, ये पहली बात है, क्योंकि उर्दू ज़बान में हमारी तहजीब सकाफत खासकर हमारा मजहबी विरसा महफूज है। उर्दू ज़बान को अच्छी तरह पढ़े, जो हमारे खासकर जो नए लिखने वाले हैं वो उर्दू ज़बान के मिजाज को समझे, उर्दू ज़बान को अच्छी तरह पढ़े, ज़बान को ज़बान की तरह पढ़े, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करे। साथ ही मैं ये कहूँ, जो आपका ये आज मैं पहले एक तरफ मैं हैरान हूँ, दूसरी तरफ खुश हूँ कि जब आपकी तरफ से मुझे कॉल आई कि कुछ पॉडकास्ट, हालांकि मैं मुल्की सतह पर या बैन अवी सतह पर ही पॉडकास्ट के बारे में सुन रहा था, जब आप लोगों की तरफ से मुझे कॉल आई तो मैं ताज्जुब में हुआ। हालांकि ये रजाकाराना तौर पर कर रहे हैं, और इसके लिए आप बहुत ही अप्रिशिएबल हैं, आपका ये काम बहुत काबिल कदर काम है। तो क्योंकि आज के दौर में इसको हम अहंग करना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को अदब से हम अहंग करना, टेक्नोलॉजी को हमारे लैंग्वेज से रिलेट करना बहुत वक्त की ज़रूरत है, इसके लिए आपका काम अप्रिशिएबल है। मैं चाहता हूँ जो हमारे नए लोग हैं चाहे जिस फील्ड से भी वाबस्ता है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट के, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप जिन जिस में कोई टैलेंट है उसको आप ढूंढें, उसको तलाश करें, और वो लोग भी जो जो आपके साथ जुड़े रहे जुड़ेंगे आगे भी, जो कारवां उम्मीद है ये कारवां आगे बड़े और बढ़ता रहे। लेकिन मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि इस काम को आगे बढ़ाते रहे, इस काम में मतलब ये डिसकंटिन्यू नहीं करना। मुमकिन है अगर आपको कुछ दिक्कतें भी पेश आई, लेकिन हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़िए, और लोगों से भी जो आपके आगे आगे आने वाले दौर में आपसे जुड़ेंगे या जुड़ते रहेंगे वो लोग भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते रहें। इस पॉडकास्ट को शेयर करने में आपकी कुछ आपका कुछ हेल्प होता है, जिस तरह हो सके उनको चाहिए आपका ताउन करे, आपको आपकी हौसला अफजाई करे, और आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने पॉडकास्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, और बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अप्रिशिएबल, वर्थ अप्रिशिएबल, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बात की, उम्मीद करते हैं कि आपका ये पॉडकास्ट आपके दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करेंगे, और हम अपने सभी सुनने वालों से दरख्वास्त करते हैं कि आप भी हमारे पॉडकास्ट सुना करें और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करें। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि मुस्तहिक है इस बात का कि हम उनके साथ एक पॉडकास्ट बनाएं, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैसेज करें, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है thekoshutalks@gmail.com, और आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा हैंडलर है thekoshutalks। आप हमारे पॉडकास्ट किसी भी फेवरेट ऐप जैसे स्पॉटिफाई, ट्यूनइन, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्रिस्कोप, या फिर जो भी वेबसाइट या एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर सुन सकते हैं, सर्च करें द कोशु टॉक्स।
कोशु टॉक्स देखना सुनना ना भूलिएगा।